जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार का कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है और जिसमें ये बताना है आचार्य जी को, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं है। एक कर्ता कर्म संबंधी भूल अनादि की है, पर वो इतनी बड़ी भूल है कि आचार्य कुंद देव को सर्वाधिक गाथाएं इस कर्ता कर्म के स्वरूप को स्पष्ट करने में लिखनी पड़ी। पहली बात तो ये है कि एक कर्ता कर्म अधिकार ही सबसे बड़ा अधिकार है, एक 75 गाथा। दूसरे सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार में भी इसकी चर्चा की, बंदा अधिकार में भी इसकी चर्चा की। बार बार आचार्य देव इस प्रश्न को उठाकर और अपने सहज सरल भाषा में इसे समझाने का निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि कर्ता कर्म संबंधी भूल ये सबसे बड़ी भूल है। दूसरी बात यह है कि एक कर्ता कर्म संबंधी भूल में न्याय शास्त्र भरा पड़ा है, लेकिन उसमें एक ही बात है पूरे न्याय शास्त्र में। हेमचंद जी जानते हैं कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है और इस पर ही सारा आप्त परीक्षा लो चाहे आप्त मीमांसा लो, सब जगह इस बात को भरा पड़ा है। कहीं भी हमने न्याय प्रथमा से लेकर न्याय तीर्थ तक की पढ़ाई पूरी की, पास भी हुए, लेकिन तब तक एक पंक्ति भी कहीं ये नहीं आई थी कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता क्या, पर ना हमारे गुरुओं ने बताई थी और ना उसमें पढ़ने में कहीं आई, कैसी भी चित्र बात है। और वो भी द्रव्यान योग है। द्रव्यान योग में तीन चीजें आती हैं, न्याय शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र और सिद्धांत शास्त्र। सिद्धांत शास्त्र माने भ्रमण सार वगैरह नहीं, ये तत्व सूत्र वगैरह वस्तु तत्व की व्यवस्था का वर्णन करने वाले जो शास्त्र हैं वो आते हैं सब। और जैसा अतिरेक वहां है वैसा ही अतिरेक एक कुंद में भी है कि यहाँ पर वो ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, एक जगह भी नहीं लिखते हैं, पर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। जैसे वो काम सब उनको सौंप दिया न्याय वालों को और ये काम इनका डिपार्टमेंट है ये समझाना है? क्यों कुंद कहते हैं कि मेरे सामने जो मेरे शिष्यगण बैठे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे पढ़ रहे हैं, जो मैं लिखूंगा वो पढ़ेंगे, जो मेरी आज्ञा मानने को तैयार हैं, उनमें एक भी तो मुझे ऐसा नहीं दिखता है जो ऐसा मानता हो कि ईश्वर जगत का कर्ता है। तो मैं एक वाक्य बोल करके भी इसमें एक क्यों अपनी शक्ति खराब करूं? तो सब ये मानते हैं कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। एक जगह थोड़ा हल्का सा उल्लेख है, कहाँ है उल्लेख, कि जो ऐसा मानता है, जो भी गुरुदेव के प्रश्न चल रहे थे ना, मैं दूसरे को मारता जलाता हूँ, बताता हूँ, सुखी दुखी करता हूँ उसमें, और विष्णु ये लोक का करता है, लोक की रक्षा करता है, उन दोनों में कोई फर्क नहीं है, इतनी इस रूप में आ गई बस क्या। ये रथा पुरुष गली में चलने वाला पुरुष ऐसा मानता है और वो विष्णु जगत का रक्षा है, और तू मुनिराज होकर ऐसा मानता है कि मैं ये समित पूर्वक चलकर जीवों की रक्षा करता हूँ, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। इस रूप में ये बात आई है। मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हेमचंद जी बोलना मत, ध्यान से सुनना। विष्णु क्यों लिया? क्योंकि जगत का कर्ता तो ब्रह्मा है। किसने ही सारा उत्तर समाहित हो गया है क्या? कि प्रकरण वहां रक्षा करने का चल रहा है। कोई किसी को मार नहीं सकता और बचा नहीं सकता, बना नहीं सकता, ऐसी बात ही नहीं है। ब्रह्मा जी को क्या को याद करे? ये सब विष्णु बन के बैठ गए, इसलिए सब वैष्णव है। कौन? हाँ, कुछ प्रच्छन्न वैष्णव है और कुछ खुले वैष्णव है। गुरुदेव इस बात को बहुत गहराई से और बड़े उसके साथ में बोल रहे थे, अभी आपने सुना होगा। तो ये सब नए आने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनके दृष्टिकोण से ये गुरुदेव का एक प्रकरण रखा गया है, क्योंकि मरम उन तक पहुंचना चाहिए, कर्तृत्व की बुद्धि का भूत उतरना चाहिए, और अत्यंत सरल भाषा है, सरल उदाहरण है। क्या? और जो वो दासाएं जो गुरुदेव बोल रहे हैं, जिनके आधार पर प्रतिपादित कर रहे हैं, उनकी बड़ी समस्या ये थी गुरुदेव की, कि जिस गुजरात की भूमि या काठियावाड़ की भूमि पर बैठकर ये बोल रहे थे, उस भूमि पर जीव दया नाम का सबसे बड़ा धर्म है, खासकर श्वेतांबर जैनों में। अरबों रुपया ये लोग इसमें हर साल खर्च करते हैं, पर विदेशों में जाते हैं तो वहां पर एक ही बात है, तो जीव दया के लिए पैसा इकट्ठा करो, बरसने लगता है वहां पैसा। क्यों? अकाल पड़ गया है, बरसात नहीं हुई है, गायों को घास चाहिए, तो गायों को घास देने के लिए, डालने के लिए, तो इन सब के लिए बहुत बहुत बहुत। वो ऐसे वातावरण में कोई किसी को मार नहीं सकता, बता नहीं सकता, तुम घास डाल के गायों को बचा नहीं सकते, ये बात कहना उनके लिए कितना, उनसे चारों तरफ घिरे हुए अश्रोता भी लगभग उन्हीं में से आए हुए, इनके रोम रोम में ये बात बसी रही हुई है। वो कितने कठिन काम थी, कितना कठिन काम था। इसलिए मैंने अभी मुख्यमंत्री प्रकाशक का साल लिखा तो उसमें एक पंक्ति लिखी है अंत में, कि टोडर मल जी ने अपनी जान की बाजी लगाकर ये तत्व ज्ञान हमारे और आपके लिए सुरक्षित करके रख रखा है। पांचवा अध्याय, छठवा अध्याय, सातवा अध्याय, इसमें जिस तरह उनने गीत मिथ्या अपनी धज्जियां उड़ाई हैं कि चारों तरफ शत्रु खड़े कर लिए, उसके बाद भी वो बचे रहते तो आश्चर्य होता है। नौ द्वारे को पिंजरो तामे सुआ समाए, उड़वे को अचरज नहीं अचरज है। किस किस तरह कई विधि इसमें है। ये नौ दरवाजे खुले हैं ना, आग का नाक खुले हैं, और अंदर चेतना आत्मा रूपी तोता बैठा है, और तोता तो एक सेकंड पिंजरे में नहीं रहना चाहता है, वो उड़ के भाग जाना चाहता है। पर नौ ही दरवाजे खुले हुए हैं, तो फिर उड़ गया मान, कोई आदमी मर गया, इसमें कौन सा आश्चर्य है? ये जब तक नहीं मरा आश्चर्य तो इसमें है। क्यों? ये आकाश में प्लेन उड़ रहे हैं, हजारों प्लेन उड़ रहे हैं, उसमें आदमी बैठे हुए हैं, नीचे ऊंचे कोई कहीं आधार नहीं है। क्यों? और उस मशीन के भरोसे जिसमें जरा ये पंखा रुक जाता, ये हो जाता, जरा लाइट चली जाए, कुछ कुछ भी जरा ऐसा भी आरे बाल के बराबर की अटकाव आ जाए, क्यों? तो जो रुक जाती है, और फिर भी ये हजारों प्लान उड़ रहे हैं, गिरते नहीं है, इसमें आश्चर्य है। कहीं एक आध गिर गया, उसमें कौन सा आश्चर्य है? समझे? बुद्ध गुरुदेव श्री ने भी वैसा ही वैसे वातावरण में पर ये बात डंके की चोट रखी है ना, वो गांधी जी का एक प्रसंग आता है इसमें, तो गुरुदेव श्री ने खुद सुनाया है हमें और सभा में भी सुनाया है, उनके प्रवचन कैसेटों में भी है, हो सकता है इन कैसेटों में भी आ जाए आगे पीछे कि गांधी जी रामजी भाई के संपर्क बहुत अच्छे थे गांधी जी से, रामजी भाई बहुत ए बने एडवोकेट थे और गांधी जी थर्ड डिविजनर थे, तो वो कानून की बहुत सलाह लेने के लिए रामजी भाई के पास आया करते थे, तो रामजी भाई ने संन्यास ले लिया तो अभी वो आते रहते थे, तो रामजी भाई स्वामी जी के प्रवचनों में जाते थे तो उन्हें पता था, तो एक आध दफे वो भी गुरुदेव के प्रवचनों में आए, क्या वो गुरुदेव का प्रवचन सुन के मुझे वो संस्मरण याद आया है, तो गुरुदेव उस समय यही गाथा ले रहे थे, ये गाथाएं ले रहे थे, और कौन सी गाथाएं थी, सो अमूरो अन्नानी रानो ये दो दुबिजे री दो, जो ऐसा मानता है कि मैं दूसरे को मारता हूँ जलाता हूँ बचाता हूँ सुखी करता हूँ दुखी करता हूँ, वो मूढ़ है अज्ञानी है और ज्ञानी इससे दुखी है, क्या कर रहे थे, क्यों जे आयु से मरण हो यह बात जिनवर ने कही तुम बचा कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं, निज आयु से जीवित रहे यह बात जिनवर ने कही तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं, कि जो उसके बीच में स्वामी जी को पता नहीं था कि एक गांधी जी आए हैं रहते हैं, उस वक्त गांधी जी इतने प्रसिद्ध भी नहीं होंगे और स्वामी जी के माथे पर छाए रहे ऐसी बात नहीं होगी, तो स्वामी जी तो कहते रहे जो ये कहता है मैं देश की सेवा करता हूँ समाज की सेवा, वो तो रामजी भाई के लिए कहते क्योंकि वे भी नेता थे, मालूम भारत आजाद हुआ था उनको मुख्यमंत्री का ऑफर हुआ था गुजरात से, तो वो तो उनको समझाते थे कि मैं देश की सेवा कर सकता हूँ देश को बचा सकता हूँ देश को ये कर सकता हूँ सुखी कर सकता हूँ दुखी कर सकता हूँ, वो मूढ़ है अज्ञानी है पूरा व्याख्यान जम के जिसमें तो 10-20 बार मूढ़ अज्ञानी कहा होगा, और गांधी जी चुपचाप शांति से बैठे बैठे सुन लिए, और उन्होंने वो आकर के जब बाद में रामजी भाई से बात करी उनने तो कोई 6 महीने बाद तब नहीं तब मिले तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे वो गुरु कहाँ हैं आजकल जो मुझे मूर्ख कहते थे वो समझे कि आज मैं आया हूँ तो ये सारा व्याख्यान मेरे ऊपर ही हो गया है, रामजी भाई ने बता दिया होगा क्या, तो मैं गुरुदेव के मुख के शब्द सुना रहा हूँ आपको, जो उन्होंने कहा कि मैंने तो गांधी जी के लक्ष्य से एक शब्द नहीं बोला था, मैं तो अपने उसमें देने के प्रवाह में बोल रहा था राजगुरु की घटना है, लेकिन उन्होंने अपने माथे पर ले लिया ये शब्द, मुझे उन्हें जबरदस्ती अपने माथे पर ले लिया और ऐसा बोले, तो उन्होंने रामजी भाई ने बहुत समझाया कि नहीं आपके लिए कुछ नहीं कहा आपने ना, वो तो उनका शहरी चल रहा था ये है ये है ये वो तो ठीक है वो तो ठीक है वो तो वो तो ठीक है तो वो प्रकरण यहाँ ये है, उसके बारे में एक आध बात मैं आपको थोड़ी और बताना चाहता हूँ कि ये बंधनकार की गाथाओं में सबसे बड़ी बात ये है दिनेश भाई कि इसमें कुंद कुंद ने करुणा नियोग का सहारा लिया है, क्या क्योंकि आयु कर्म के उदय से जिंदा रहता है और आयु कर्म के क्षय से मरता है, समय साथ तो ये नहीं कहता है, समय साथ के लिए तो आयु कर्म भी कर्तव्य है, जैसा तू किसी को मार बता सकता ऐसा आयु कर्म भी मुझे नहीं बता सकता और आयु कर्म भी मुझे नहीं मार सकता, क्यों समय साथ के लिए तो दोनों ही परतृप्त हैं और दोनों ही जड़ हैं, ये कारमान बनना है, क्या ख्याल में है ना, इसलिए वो तो धर्म तो स्वीकार नहीं है। और आगे उन्होंने धुनाई भी करी है, अभी अभी अपने अपन जो गाथाएं पढ़ रहे हैं ना, इसमें ही आने वाली है क्या कि जीव आत्म गुण करे, कर्म आत्म गुण करें और आत्मा कर्म के गुण करें, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा मानोगे तो दुख क्रियावादी मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। देखो 86 में, यदि आत्मा जड़ भाव चेतन भाव दोनों को करे तो आत्मा दुख क्रियावादी मिथ्या दृष्टि अब करे। लेकिन वो इतना बड़ा सत्य है और जगत का इतना विशाल बहुमत उसके असत्य के पक्ष में है कि एक कोई ये बात सुनने को तैयार नहीं है कि तू जीव दया नहीं कर सकता और ये नहीं करना चाहिए। यहां भी जो गुरुदेव के इतना सुनने के बाद में भी, यहां भी आप इसी दृढ़ता से कहेंगे तो यहाँ से घर तक पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। कैसे लोग समझाएंगे, है तो ठीक लेकिन 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 इतनी लेकिन सामने आ जाएंगी कि हमें घर तक पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कहना नहीं होगा, सारा लिए बिना काम नहीं चलेगा। क्यों कि लोगों के हृदय में आत्मा का प्रवेश नहीं है, स्वीकृति नहीं, लेकिन कर्म की स्वीकृति है। और अभी आप में प्रशिक्षण शुरू चल रहा है तो एक आध दिन में पढ़ाएंगे हमारे अध्यापक आपको क्या कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, उदाहरण से सिद्धांत की ओर जाते हैं। क्यों जो जगत को मान्य है उससे जो मान्य नहीं है उसकी ओर जाते हैं। भैया जिसने जैसे करे होंगे वैसे ही तो भोगने पड़ेंगे, वैसे ही तो भरेंगे, आगे कर्म बलवान है, ऐसा है वैसा है, तो कर्म की बात इसके दिमाग में जमी हुई है। इसलिए आचार्य कहते हैं उसके भरोसे उसके सहारे जो बात उसको स्वीकृत है हम इस बात को स्वीकार करें। तो कितनी गाथा लिखेंगे, आयु कर्म के क्षय से मरण होता है, आयु कर्म के उदय से जिंदा रहता है, साधा दिनी आदि शुभ कर्मों के उदय से सुखी होता है, अशुभ कर्म के उदय से दुखी होता है। ए, ए, तो कर्म के उदय से होता है तो तू कौन होता है? आत्मा स्वयं से सुखी दुखी होता है, स्वयं से जीवन में ध्यान करता है, ये बातें नहीं कह रहे वहां। और अनंत काल पहले से नक्की है कि तू कब कौन सी पर्याय ध्यान करेगा और किस समय कौन सी पर्याय का व्यय हो जाएगा, वो परम सत्य है ना। कर्म तो बाद में बने हैं, कर्म को तो उनके अनुसार बनना पड़ा है, गति अनुसार मति हुई है नहीं ना। लेकिन वो इस स्वीकृत तत्व के आधार पर उस तत्व को स्वीकार करना चाहते हैं, क्योंकि समस्या ये है कि तुम जो कर्ता बन रहे हो। वो कहते हैं कुंदकुंदाचारी, मेरी समस्या ईश्वर जगत का कर्ता है ये नहीं है, क्योंकि मेरा कोई शिष्य बात नहीं मानता। मेरी समस्या ये है कि घर घर में जो छोटे छोटे ईश्वर बन बैठे हैं, कोई देश का कर्ता, कोई समाज का कर्ता, कोई संस्था का कर्ता, कोई अपने परिवार का कर्ता। क्यों? कोई परिवार का पालन पोषण करता है, कोई अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करता है, कोई देह का पालन पोषण करता है। कितने कर्ता बन बैठे ना, ये घर घर में जो हजारों लाखों ईश्वर बन बैठे हैं, और ये बताने के तू कर्ता नहीं है, वो तेरा कोई कर्ता नहीं है। वो तो कहते मुझे ये समझाना है। अब तू कर्ता नहीं है तो वो कहता क्यों नहीं है, मैं नहीं सही उपादान करता, मैं निमित्त करता तो हूं। ये मैं कहना चाहता हूं अभय कुमार जी कि ये गाथाएं निमित्त कर्तृत्व के निषेध की है। कौन सी? वो बंधाधिकारी है ना, 252 तक है, 247 से 247 से लेकर 252 ऐसी कुछ गाथाएं हैं। वो गाथाएं निमित्त के कर्तृत्व के निषेध की गाथाएं हैं। क्यों? वो कहते हैं कि कर्म का उदय निमित्त, कर्म का उदय निमित्त ही तो है, तो एक निमित्त के सामने दूसरा निमित्त खड़ा करते हैं, तो बहिरंग निमित्त के सामने अंतरंग निमित्त खड़ा करते हैं। अंतरंग निमित्त का अनुवाय व्यतिरेक होता है, वो ज्यादा मजबूत होता है, वो उपादान को तो भी छोड़ ही दिया उन्होंने, निमित्त के सामने निमित्त को भिड़ाया। क्यों? तो सब माँ बाप बाल बच्चे को पालते, तो वो ये नहीं कहते कि कोई नहीं पालता है, वो तो अपने आप अपने भाग में लिखा के लाया है, कहते अपन बोलते कि नहीं बोलते, अब वो अपने सब अपनी व्यवस्था करके आया है, तुम्हारे भरोसे नहीं आया है, आया तो हमारे घर है कि हाँ आया होगा, क्यों? लेकिन अपना पुण्य उदय के लेके आएगा तो तुम जैसे नौकर उसे मिलेंगे सेवा करने वाले, बोलते कि नहीं बोलते। लेकिन वो कहता है कि नहीं 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 माँ बाप पालते हैं, तो कहता अच्छा सर, अच्छा अच्छा बता माँ पालती है कि बाप, कला उनको ही भिड़ाओ ना, दो निमित्तों को ही भिड़ाओ ना, कौन माँ पालती है कि बाप, दे रहा हूँ वापस में तुम क्या कर रहा, तो दो निमित्तों को भिड़ाओ ना, कि कर्म वाला निमित्त पालता है कि तू निमित्त पालता है, तो ये तो गारंटी है बच्चों को पालने में बाप ही कमजोर पड़ने वाला है, माँ और बाप का झगड़ा खड़ा होगा तो कौन पालता है, वो कहेगी मैंने 9 महीना पेट में रखा, मैंने मिर्ची नहीं खाई, मैंने ऐसा नहीं किया, फिर मैंने उसको पाला पूछा दूध पिलाया ये सब किया, तुम क्या किया, अस्पताल ले गई तुम तो हाथ से तक नहीं छुआ, हारना पड़ेगा समझा, पुरुष को हारना पड़ेगा, तो फिर पहले नक्की कर लो के मांगे थे बाप ने, तो एक की तो छुट्टी करो कि बाप की तो छुट्टी करो कम से कम, इसने नहीं पाला, फिर माँ को फिर निपट लेंगे, अकेली तो होने दो ना, अब तुम एक साथ सबके साथ भिड़ोगे तो नहीं चलेगा। एक किसान के खेत में 4 आदमी, एक ब्राह्मण, एक छत्री, एक बनिया, 3 आदमी घुस करके और उसके खेत की सब चीजें तना मना तोड़ ताड़ करके बहुत खाया, भैया बना करके बहुत आया। अब बेचारा वो अकेला था किसान, उसने ये 3 है, यदि मैं इनके लिए कुछ गड़बड़ करता हूँ तो ये अब 3 मेरी पिटाई कर देंगे, तो क्या करूं कैसे रोकूं इन्हें। तो वो आया और उसने कहा कि देखो महाराज, आप तो हमारे तो गुरु है, ब्राह्मण देवता है, तो आपने हमारे खेत में जो खाया पिया उसी कोई खास बात नहीं है, आप तो आज्ञा देते हम आपके घर ही पहुंचा देते, क्यों तो तकलीफ करी, और राजा साहब आप तो मालिक हैं, छत्री से कहा, लेकिन ये बनिया कौन बता है जो यहाँ घूम के आया है, ये तो इसके यहाँ तो कुछ लेने जाओ तो वसूल करता है, कर्जा लो तो ब्याज वसूल करता है, ये तो कभी इसकी कैसे हिम्मत हुई, तो उसी पिटाई शुरू करी दोनों से, अपन को तो कुछ कह नहीं रहा है, अपन काहे को चक्कर में पड़े तो बढ़िया को क्यों, तो बढ़िया की पिटाई शुरू हुई है? तो बढ़िया भागा, तो फिर बोले कि साहब ये तो मालिक है जमीन की, और इनका क्या कहना, इनका तो सब कुछ है ही, लेकिन ब्राह्मण देवता तुम तो हमारे घर पर शादी कराने भी आते हो, तो बात बात में धर दे अर्थनी, धर दे रुपया, एक मंत्र बोलते हो 3 रुपया रखवाते हो, क्यों तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई, तो उनकी पिटाई शुरू करी, तो बेभागे बोले मालिक साहब यह तो सब आपका ही, लेकिन आप बराबर चेक वसूल करते हो तो उन्होंने कहा इस तरह 3 को भगाया, 3 को तोड़ तोड़ के, ऐसे ही आचार्य कहते हैं अब सब निमित्तों से एक साथ नहीं भेज सकते, क्यों तो करणानी वालों को साथ ले लो, नहीं तो यदि उस पार्टी में चले जाएंगे, क्यों तो उन्होंने कहा कि कर्म के उदय से जीवन और मरण होता है, उदय का अभाव हो तो मरण होता है, उदय हो तो जीवन होता है, लेकिन तू कौन होता है जीवन मरण करने वाला कोई किसी का, इस तर्क के आधार पर उन्होंने पूरी उन गाथाओं में तर्क के कर्तृत्व जो हमारा हम जो कर्ता बने बैठे हैं एक दूसरे दिल के उनका निषेध किया, क्योंकि वो कर्म कोई दावा ठोकने नहीं आता है, तो कर्म का निषेध तो बहुत आसानी है, क्योंकि जब हम कर्म का निषेध करेंगे तो कर्म हमारे आड़े नहीं आएगा कि तुम निषेध क्यों करते हो। लेकिन हम तुम कह रहे तुमने अपने बाल बच्चों को नहीं पाला और तुम अपने गाय भैंस को नहीं बचा सकते हो, तो सब लोग जान ठुक के खड़े हो जाते, हम जिंदगी भर कर करके मर गए और तुम हमारे बाल बच्चों को भड़का नहीं आए हो। वैसे ही तो बाल बच्चे आजकल माँ बाप की सेवा करते नहीं है और तुमने ये समझा समझा करके कि माँ बाप कोई नहीं पालता है, कोई पाल ही नहीं सकता, कोई ने किसी का आज तक कुछ किया ही नहीं है, जो कुछ हुआ है तुम्हारे पुण्य पाप के वजह से हुआ है। हमारे घर में आग लगाने आए हो क्यों? ये विरोध करते हैं। तो इसलिए उन्होंने करुणानियों के सहारा लेकर और इस बात को उन्होंने रखा। वहां ये तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। इतनी बात मैंने आज आपको इसलिए कही कि कल से आप गुरुदेव के भजन में भी समय पर पहुंचेंगे और बराबर उसको भी ध्यान से उपयोग से सुनेंगे, सुनना चाहिए, बहुत अच्छा प्रकरण है वो। हमारी ओर मत करना, हम तो घर पे सुनते रहते हैं, हमारा स्पीकर चालू है। तो इतना ही छूटता है कि जब हम घर से चल करके यहाँ आते हैं ना, तो उतने गुरुदेव का प्रवचन छूटता है। और क्या आप लोग वहां से कोई डिस्टर्ब करने आ जाते हैं उस समय, तो वो छूटता है बस। बंद करना पड़ता है, क्या करें, किसी का फोन आ रहा है तो बंद करना पड़ता है ना। तो ये बहुत मार्मिक सरल आप लोगों के हिसाब से ही सब चलाने जाने वाला है, इसलिए सारे विद्यार्थियों की उपस्थिति में सबसे पहले लगाऊंगा। कल आज लेट आए हैं और आधे पर्दे आए हैं, कल नहीं ना। हम तो ये चिंता कर रहे थे रात को बैठ करके कि ये कल हॉल में बनेंगे नहीं तो अपन को ऊपर जाके प्रयत्न करना पड़ेगा, शाम की देख करके भीड़ और ये भी देख करके भी इतने लोग चले गए थे वहां कल, अरे वो तीन चार पांच बसें भर के चली गई थी इसलिए लोग कम थे, अब इतने लोग आएंगे तो उन्हें कहां ठहराएंगे। हमें फिर खाली दिखा, ऐसा नहीं कर सकता। जब जरूरत पड़ेगी विद्यार्थियों को नहीं सुनने की छुट्टी देने की, पढ़ाई के रखना जोर आएगा, तब हम अपने आप छुट्टी दे देंगे, हम अपने प्रवचन से भी छुट्टी दे देंगे, गुरुदेव के प्रवचन से भी छुट्टी दे देंगे, है ना। लेकिन जब तक उसकी बात आई नहीं है तब तक नहीं है छुट्टी, बराबर सुनो। अब अपना प्रकरण क्या चल रहा है, 84-85 में था, 84-85 और 86, अनेक विध पुद्गल कर्म को करे भोगे आत्मा, व्यवहार नय का कथन है यह जान लो भव्यात्मा। यहाँ इस गाथा में रंच मात्र गंध नहीं आती है कि कर्ता भोगता आत्मा नहीं है, अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों का, उसमें भाव कर्म, देव कर्म समझो, सब नो कर्म सबका ले लेना, एक साथ सबको निपटाओ ना। कभी कभी ऐसा झगड़ा होता है और बड़ी बड़ी जगह परमात्म कि यहाँ कौन लेना, कौन लेना, कौन लेना, क्या अगर कोई समझ लेंगे नहीं, मेरी समझ में नहीं आता है, उत्तर पूरे को सुनने नहीं किसी को, सब भग जाते हैं, उत्तर आता है तो कौन करता है, कौन तो? धर्म परीक्षा में एक कहानी आती है, धर्म परीक्षा पढ़ी क्या, किताब का नाम सुना कभी, अमित गति आचार्य की एक ग्रंथ है धर्म परीक्षा। वो अमित गति आचार्य कौन, जिनका ये सामायिक पाठ है, सत्येषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम, कृष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, मां धृष्ट भावम विपरीत वृत्तौ सदा मम आत्मा विदधातु देवा। उन आचार्य की ये धर्म परीक्षा है, मालूम वो कैसी किताब है कि कहानियों के माध्यम से न्याय शास्त्र समझाया गया है, कहानियों के माध्यम से न्याय शास्त्र समझाया गया है। दो मित्र थे, एक का नाम था पवन वेग, एक का नाम था मनोवेग, ये भी सब काल्पनिक नाम है। मनोवेग माने इतनी तेज दौड़ने वाला जितनी तेज मन दौड़ता है, और पवन वेग इतना तेज दौड़ने वाला जितनी हवा दौड़ती है। तो मनोवेग बड़ा भाई था, पवन वेग छोटा भाई था, और मन मनोवेग ज्यादा दौड़ता था, समझे ना। तो पवन वेग ना समझता और मनोवेग पवन वेग को समझाना चाहता था, तो उसने धर्म परीक्षा में कहानियों के माध्यम से अपने भाई को समझाने की कोशिश की। क्या तो उसके बीच में एक कहानी आती है, थोड़ी दो मिनट की आपको सुनाऊंगा, लंबाई लंबी नहीं है, घबराना नहीं है, वो रिक्शे वाले जैसी नहीं है, कितने से एक घंटे निकल जाएगा। वो ये है कि एक मुनिराज के पास चार दोस्त गए और मुनिराज से कहा, महाराज हमें कुछ दे दो। महाराज ने कहा, हमारे पास क्या है? कि नहीं नहीं महाराज, हम आपके पास आए हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है, हमें तो आपको कुछ देना ही पड़ेगा, कुछ देना ही पड़ेगा। तो बेटा उपदेश दे देते हैं, तो सुनो। वो उपदेश तो हमने सुन लिया, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ दे दो। कि क्या दे रहे हैं? तो कुछ प्रतिज्ञा दे दो। इन मुर्गों को क्या प्रतिज्ञा नहीं समझ रहे, जैसे दिख रहे हैं। मैंने कहा, बेटा आज से अनसना पानी नहीं पीना। ठीक है, आए। अब आगे बढ़े तो जब एक कुआं आया और कुएं पर से पानी निकाला, और निकाल करके जब वो पानी पीने लगे चारों छान के, तो एक बोला कि नहीं, तुम छान के पानी नहीं पी सकते। क्यों? कि महाराज ने ये प्रतिज्ञा मुझे दी है, तुम्हें नहीं दी है। ये बहुत झगड़ा हो गया उनका आपस में। किस बात पर? कि तुम्हें कहां दी? मैंने तुझे पूछा था, और मेरे जवाब में जब उनने बोला था, मेरी तरफ देख रहे थे, वो पेड़ मेरी संपत्ति है, तुम नहीं कर सकते हो। अब बहुत झगड़ा हो गया, तो कह महाराज से ही निपटा चले कि महाराज से पूछे किसको दी थी। तो लौट के महाराज के पास गए कि महाराज, इस तरह हमारा झगड़ा हो गया है, तो आप ही बताओ क्या कि हमने से आपने किसको ये प्रतिज्ञा दी। तो महाराज ने माथा ठोक लिया कि इन मूर्खों से क्या समय खराब करूं। बोले, भैया तुम में से जो सबसे ज्यादा मूर्ख हो ना, उसको दी है मैंने। क्या? तो तुम में जो सबसे ज्यादा मूर्ख हो, उसको मैंने ये प्रतिज्ञा दी है। तो साहब, अब इस बात में झगड़ा शुरू हो गया कि कौन है मूर्ख। वो कह मैं मूर्ख हूँ, वो कह मैं मूर्ख हूँ, मैं मूर्ख हूँ। क्या आखिरकार निर्णय नहीं हो पाया कि उन चारों में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? मूर्ख तो क्या नहीं है। तो फिर महाराज के पास पहुंचे कि महाराज, अब आप ही निर्णय करके दो कि हम कौन मूर्ख है और किसके लिए आपने दी है। तो उन्होंने कहा, भैया तो हमें क्यों परेशान करते हो, गांव में पंच है, जाके पंचों से निर्णय करा लो। क्या? हाँ, हम इस चक्कर में नहीं पड़ते हैं, पंचों से जाओ और उनसे निर्णय करा लो कि तुम कौन सबसे बड़ा मूर्ख है। तो पंचों के पास गए तो पंचों से कहा कि महाराज की आज्ञा है कि आप लोग निर्णय करके दो कि हमसे बड़ा मूर्ख कौन है। तो पंच इकट्ठे हो गए, पंचों ने कहा कि ठीक है, तो तुम अपनी अपनी मूर्खता की कहानियां सुनाओ कि तुमने क्या क्या मूर्खता की। और फिर वे अपनी अपनी मूर्खता की कहानियां सुनाते हैं, और फिर वो कहानी तो एक सुनाएगा तो चारों की कितनी लंबी हो जाएगी। कौन मूर्ख है, इसका निर्णय क्या होगा, वो बहुत लंबी कहानी है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक आत्मा परद्रव्य का कर्ता नहीं है, कर्म का कर्ता नहीं है, तो द्रव्य कर्म का नहीं है, कि भाव कर्म का नहीं है, कि नो कर्म का नहीं है, अरे सबका ही नहीं है। लड़ते का बहुत जोरदार लड़ाई चल रही है, मैंने सुना। हाँ, इसपे इसलिए तो मेरा मत जानना चाहते थे, इसलिए मैंने थोड़ी कह दी। अब पूरा तो 20 दिन रहते तो सुन के मैं बताता। क्यों? सूत्रा का पास जुलाहों से लठा रही, सबको ना झंडा छोड़ना है, ना पानी छोड़ना है, ना घर का काम छोड़ना है, ना विषय भोग छोड़ना है, ना चाय पानी छोड़ना है, ना रात का भक्षण छोड़ना है, कुछ नहीं करना है, ना आत्मा सुनना समझना है, बस इन बातों को खत्म करना है। खत्म है, एक ही कहता है, वो कहता है, लेने देने नहीं। अरे सबके पास बोले गए 8000 घंटे के प्रवचन है ना, सुनो ना और उनका निर्णय कर लो, और उसे उनका मानने दो, उसे उनका मानने दो, उसे क्या फर्क पड़ेगा। करता वो उन दोनों का नहीं, ऐसा तो है नहीं कि एक का करता होता हो, एक का नहीं होता। एक नए से एक का है, दूसरे नए से दूसरे का है, तीसरे नए से तीसरे का, और एक नए से तीनों ही का नहीं है। हमारे अंदर सारे तीन है, बस इतनी सी बात है कि वो नए लग जाएगा। व्यवहार नए से पर का करता है, सुनो। अशुद्ध निश्चय नए से रागादिक का करता है, शुद्ध निश्चय से संबंध समाधि निर्मल भावों का करता है, और परम शुद्ध निश्चय नहीं से किसी का करता नहीं। चार दुकानें खड़ी है नसी नहीं, नए चक्र तो किसी को पड़ता नहीं, कि नए चक्कर, नए चक्र के चक्कर में कौन पड़े है? क्यों वो समझ रहा नहीं है? अरे होगा थोड़ा मतलब इन बातों में थोड़ा तो रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको इतना उछाल करके हमने बहुत बड़ा मोक्षों के अंदर में विग्रह खड़ा करते हैं। ऐसी लौकिक व्यवस्था में ये टेबल आगे लगाना के पीछे लगाना के ऊपर प्रवचन करना के नीचे करना, इसमें मतभेद हो जाए तो इस पर दो पार्टियां खड़ी हो जाएंगी। सर क्यों क्यों हो भाई इस सब लड़ने वालों को कोई कारण नहीं चाहिए। वे बिना कारण ही इतना बड़ा काम खोज लेते हैं कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। एक बेचारे छोटे इसके बराबर बच्चे ने मम्मी से पूछा कि मम्मी इतने बड़े बड़े विश्वयुद्ध हो क्यों जाते हैं जिसमें लाखों लोग मर जाते हैं? क्योंकि तुझे नहीं मालूम? कहने में ये नहीं मालूम, ये जो रसिया है, रसिया बहुत नालायक है, ये सारी दुनिया को कम्युनिस्ट बनाना चाहता है। यदि वो अमेरिका नहीं होता तो सबको कम्युनिस्ट बना देता, तो प्रॉपर पूंजीवादी थे। क्या बकती है, बच्चे का दिमाग खराब कर रही है? बेटा सुनो धराव, ये जो अमेरिका है ना, इस सारी दुनिया को पूंजीवाद फैलाना चाहता है। यदि रशिया नहीं होता तो ये सब छा जाता। वो रशिया ने बचा रखा है लोगों को, गरीबों की रक्षा तो वही करता है। देखो तुम दिमाग मत खराब करो बेटा, मेरा है सबसे ज्यादा सेवा मैंने की है, 9 महीना मैंने पेट में रखा, झगड़ा शुरू हो गया। तो लड़का बोले पापा पापा रहने दो, क्या मेरी समझ में आ गया ये महाबुद्ध स्वरूप कैसे होते हैं। सचमुच इनकी जड़ में जाकर के देखो तो कुछ नहीं निकलता है, सिर्फ नए की बात है। मान लो गुरुदेव के साथ, गुरुदेव के प्रजन में निकला था कि आई ये बात नहीं थी, आई ये बात है, तो ठीक है। आप समझे ना, मैंने कल कहा था ना कभी यहाँ कोपा दिख रखा है तो भाव कर्म की बात होगी, ज्ञान यदि दीर्घ कर्म की बात होगी तो ज्ञान बना जी लिखते क्यों था? तो मेरी ये अपेक्षा है, अब मुझको दीर्घ कर्म का कर्ता थोड़ी स्थापित करना है, मुझे नौ कर्म का कर्ता थोड़ी स्थापित करना है, आखिरकार तो मुझे सबका ही अकर्ता बताना है ना। क्योंकि जो पर्यायों से भिन्न है वो आत्मा मैं हूँ, मेरा अपनापन तो उसमें है ना, तो वो पर्यायों से भिन्न है, पर्याय उसमें है ही नहीं तो वो करे क्या, क्योंकि काम तो पर्याय में होता है। जब हमने उसको ही काट दिया तो उसमें कर्ता कर्ता का प्रश्न ही खड़ा कहाँ होता है? क्यों मेरे कहने का मतलब है कि गुरुदेव ने कहीं कही होगी यहाँ बात भी, क्या प्रचार दिमाग में चल रहा हो तो ठीक है, सारी जिनवाणी अपने पास मौजूद है ना, तो उसमें तो माथा मारता नहीं कोई, उसे तो कोई पढ़ना नहीं चाहता, उसका तो अभ्यास करना नहीं चाहता है ना। और ये क्योंकि अपनी कसाई की लड़ाई को हमें सैद्धांतिक जामा पहनाना है, समझ लो अपनी भाई एक मुद्दे पे लड़ाई है ना हमारी दिनेश भाई, तो वो मुद्दा खत्म हो गया, और खत्म हो गया माने अवसर निपट गया। मान लो इस पर ही थी ना कि आगे कुर्सी आगे रखने के पीछे रखना है, इस पर भी झगड़ा हो सकता है कि दो कुर्सी क्यों रखी, अपने को बड़ा पंडित समझता है। कल भी मेरे को दो कुर्सी रखने लगे प्रवीण भाई, मैंने कहा भैया वो तो जरा साथ की गद्दी में ऊपर रहूं और इसके लिए मेरे को ऐसा पैर रखना पड़ते हैं, और लोगों को दिखूं इसलिए रखते हैं, हर जगह जरूरी नहीं है। क्या बड़े पंडित के नाते नहीं है? आज बड़े पंडित के नाते हो तो मैं इतने बड़ा पंडित थोड़ी हूँ कि दो ही कुर्सी से काम करे, तो चार रहो और सबकी किसी की दूसरी की दो नहीं लगना चाहिए, सबकी एक एक लगे और मेरी चार लगे, आज मैं बड़ा पंडित क्यों? अरे भाई खत्म हो गया, दो रखी रहने दो, उन्हें हटाना हो तो हटा दो, ये झगड़े की कहां बात है, समझे ना। मैं बात कहते देखो यहाँ कर्म है, गाथा कौन सी थी अपनी, चौरासी, अनेक विध पुद्गल कर्म को करे भोगे आत्मा, व्यवहार नय का कथन है यह जान लो भव्यात्मा। ये गाथा अपने में परिपूर्ण है कि नहीं, कि व्यवहार नय का ये कथन है, हे भव्यो तुम इस बात को जान लो। नहीं जानो तो नहीं कहा, बोले बोलते जाने लो प्रयोजन वंश है। अब अगली गाथा ले, वो कह रहे कि पुद्गल कर्म को करे भोगे जगत में यदि आत्मा, तो विभार भाई साहब कह रहे थे ना कि पुद्गल कर्म को आत्मा करता भोगता है, तो यदि हम ऐसा माने कि पुद्गल कर्म को आत्मा करता है तो ये जीव दुख क्रिया अव्यतिरिक्त हो, दो क्रियाएं एक साथ हो जाएंगी है, और जो जिनेन्द्र भगवान को स्वीकार नहीं है, देखा ना, सम्मत न जो जिन धर्म में, मूल गाथा में जनाव सदम, जिनेन्द्र भगवान को असहमति है इसे, जिनेन्द्र भगवान को स्वीकार नहीं है। ये तर्क इसे बोलते हैं आगमाश्रित तर्क, हमने कहा भगवान ने ऐसी कही है, भगवान को ये स्वीकार नहीं है, तो और क्यों नहीं है, क्या नहीं, हम इतने नहीं जानते, तो गुरुदेव ने ऐसा कहा है, क्यों पैसा यहाँ दो फुट जगह आगे छोड़ देना, कोई बैठेगा नहीं, तो क्यों नहीं बैठेगा साहब, तो साहब डॉक्टर साहब ने ऐसा कहा, हम तो और कुछ नहीं जानते, चलो तो दो फुट रखो, दो फुट रखो, भगवान को उन्होंने सामने खड़ा कर दिया। फिर वो कहते हैं कि नहीं, हम तो ऐसे नहीं मानेंगे, तो कहते यदि आत्मा जड़ भाव चेतन भाव दोनों को करे, जड़ों को करे और चेतन को करे, तो आत्मा दुक्रियावादी मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। अब इन दोनों में दुक्रियावाद ये शब्द आ गया, तो ये दुक्रियावाद समझना सबसे पहले अपन को जरूरी है, अन्यथा इन गाथाओं का अर्थ हमारी समझ में नहीं आएगा। और दुक्रियावाद समझने के लिए मैं बनारसी दास जी का छंद निकाल के लाया, नाटक समय सार का छंद है, मैं पढ़ता हूँ आप सुनो। एक परिणाम के न करता दरव दुए, एक परिणाम के दो द्रव्य कर्ता नहीं हो सकते, और दो परिणाम एक द्रव्य न धरतु है, और दो परिणामों को एक द्रव्य धारण नहीं कर सकता। दो तरह का हो गया दुखियावादी, एक करे तूत द्रव्य कवे हूँ, एक करे तूत दो ही द्रव्य कवे हूँ ना करें, एक काम को दो द्रव्य मिलकर नहीं कर सकते, और दो ही करे तू तो एक द्रव्य ना कर तू है, और दो कामों को एक द्रव्य नहीं कर सकता। जीव पुद्गल एक खेत अब गाही दो, यद्यपि जीव और पुद्गल एक क्षेत्र आप गाही है, अपने अपने रूप ते को न टरत है, अपने अपने रूप को कोई नहीं छोड़ता है, जड़े परिणाम को करता है पुद्गल, चिदानंद चेतन स्वभाव आतर तू है, तो जड़ में है जड़ का करता जड़ कर्म है, और चेतन का करता चेतन कर्म है, इतनी सी बात है। दिक्कत क्या होती है कि उस कर्म शब्द से हमने एक काम मान लिया, जबकि वो एक काम नहीं है, वो दो काम है, एक जो चेतन में कर्म रूप प्रणमन होता है वो, और एक जो कर्म में कारमान बगणा कर्म रूप प्रणमन होती है वो, क्या इस शब्द को फिर द्वारा पढ़ता हूँ जैसे आपको ख्याल में आएगा। एक परिणाम के न करता द्रव्य दोई, दोई परिणाम एक द्रव्य न धरतु है, एक करे तू तो दोई द्रव्य कब हूँ न करे, दोई करे तू तो एक द्रव्य न करतु है, जीव परिणाम एक खेत अब गाही दो, अपने अपने रूप ते को न करतु है, जड़े परिणाम को करता है पुद्गल, चिदानंद चेतन स्वभाव आतरतु है।
कैसा लग रहा है
कि माँ बाप लड़ पड़े, दो महिलाएं लड़ पड़े कि एक कहे कि ये मेरा बेटा है, एक कहे कि ये मेरा बेटा, तो समस्या बहुत बड़ी है। उससे बड़ी समस्या ये है कि दो पुरुष ये कहें कि ये मेरा बेटा है, और वो कहे मेरा ये बेटा है, समझना, पहली समस्या बड़ी है, और दूसरी उससे बड़ी क्यों है बताओ। पता दूसरी उससे बड़ी क्यों है? तो माँ ने तो जन्म दिया है तो डिसीजन बहुत आसानी से हो सकता है कि अस्पताल में जाके देख लो कौन माँ के पेट से बच्चा ये पैदा हुआ था। मैंने उसके लिए तो बहुत प्रमाण हमारे पास मौजूद है ना। दो माताएं यदि दावा करें तो उसके निर्णय करने के लिए हमारे पास निर्णय करने में समय बहुत है। लेकिन बाप दावा करें तो फिर वो आज के जमाने में डीएनसी करानी पड़ेगी। क्या क्या अब जो भी हो यार उनको क्या क्या कहते हैं तो समझ गए हमारा काम हो गया। तो चल रहा ना उसका अपना वो कौन सा नेता था नारायण दत्त तिवारी का। वो बेटा कहता है मेरे बाप है, वो कहते हैं मेरा बेटा नहीं है, तो जांच करा लो। मैं कहता हूँ बाप को तो खैर पता होगा कि नहीं होगा कि वो उसका बेटा है कि नहीं है, कि बेटे को कैसे पता कि मेरा बाप है? तो उसकी अम्मा ने बताया होगा उसे, क्यों और क्या उपाय हो सकता है? तो ये तो उम्र जरा कठिन है और वो तो आजकल चल गया, आज से 150 वर्ष पहले कहाँ थी जब बनारसी रास्ते के जब कभी कहाँ उपाय था हमारे पास किसके बाप का कैसे पता चले? तो वो जरा ज्यादा कठिन है। किन्हें दो महिलाओं में झगड़ा हो तो और दो पुरुषों में झगड़ा हो तो, लेकिन एक महिला और एक पुरुष यानी माँ और बाप में झगड़ा हो कि एक किसका बेटा है तो क्या 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 समस्या है? क्या बोलो? अरे कि बेटा सब दोनों का भाग्य से एक है, लेकिन उल्टो तो ये बेटे का बाप है और ये बेटे की माँ है तो क्या झगड़ा है? दावा ये करते क्या वो माँ महिला है वो माँ बने का दावा कर रही है और पुरुष है वो पिता बने का दावा कर रहा है, इसमें झगड़ा कहाँ है? बोलो तेरी माँ कहती है कि इसका नहीं है तो तू बता किसका है? सात फेरे पे तेरे रिश्ते पड़े थे क्यों? और यदि किसी भी ऐसा तो नहीं कह सकती है कि ये ना इसका है और ना किसी पुरुष का, ये तो कोई माँ नहीं कह सकती है ना। तो दावा कहाँ है? तो वो कह रहे हैं कि चेतन भाव चेतन आचरतु है और जड़ भाव को जड़ आचरतु है, इसमें कहाँ झगड़ा है? आप समझे ना इसमें छंद में से निकलता ना क्लियर। मैं इस छंद को इसलिए पढ़ रहा हूं कि ये इसी प्रकरण में है, इसी प्रकरण में है कि बहुत प्रकरण के हिसाब से अर्थ लगाने में बहुत महत्व है, हम उस पर ध्यान नहीं देते से सारी गड़बड़ होती है। बताओ इसका क्या अर्थ है? बोलो सब पंडित लोग देखो। एक देखिए जानिए रम रहिए कठोर समल अमल न बिचारिए यह सिद्ध नहीं। और ये बनारसी दास का है, बनारसी दास नीचे बैठे हैं लिख रहे हैं। क्या अर्थ है इसका? नीचे की पंक्ति का पूछना चाहता हूँ मैं। समल अमल न बिचारिए यह सिद्ध नहीं। और सब पंडित लोग अपने मन में जवाब दे लेना, बाकी बिचारे लोग क्या कहेंगे? क्यों तो न समल है आत्मा न विमल है, लेकिन समल माने क्या? समल माने क्या? विमल माने क्या? माने राग देश का महल उसमें नहीं है कि राग देश का महल उसमें है, कर्म का मैल है, ये मलमूत्र शरीर का ये मैल है। मैल माने क्या मैं बताओ? समल और विमल में जो मल है उस मल का अर्थ क्या है? इसका उत्तर अपने अपने मन में दो। ये पहुंच गए ठिकाने। बहुत अच्छे स्वाध्यायी है ना मधुकर भाई। ये उस कलश का अनुवाद है कि मेचक तत्वयो कि भगवान आत्मा न मेचक है न अमेचक है। तो समल माने मेचक और अमल माने अमेचक। अब मेचक माने क्या? जो जी झगड़ा खड़ा हो गया कि मेचक माने समल और अमेचक माने अमल, ऐसा हो गया ना कि ये कौन है नागनाथ के नागनाथ का समझने के सांपनाथ, तो नागनाथ और सांपनाथ में क्या फर्क है? क्यों? तो भैया इसका अर्थ है मेचक माने अनेकाकार और अमेचक माने एकाकार, ये भाव संबंधी बोल है, बोलते ना कौन आत्मा में चार चीजें है ना, कौन द्रव्य क्षेत्र काल भाव। द्रव्य की अपेक्षा आत्मा अपना त्रिकाली ध्रुव वो सामान्य है, क्षेत्र की अपेक्षा असंख्य प्रदेश ही है क्या ना, काल की अपेक्षा अनादि अनंत है और भाव की अपेक्षा अनंत गुण वाला है। अनंत गुण वाला माने होता है अनेकाकार, और एकाकार माने अनंत गुणों का अखंड पिंड, भेद नहीं है, भेद का निषेध। तो भाव संबंधी भेद भी उसमें नहीं है, द्रव्य से काल संबंधी भेद तो है ही नहीं, क्योंकि भाव है अंतिम। तो जब अंत लगाते हैं तो लोभांत का सारे से लोभ गया तो सब गए, तो फिर समल अमल न बिताए कि आत्मा मेचक है कि अमेचक है, इसके विचार में पढ़ने से क्या फायदे का। इसमें देखा ना मेचका मेचकत्वयो है ना, कि मेचक मेचक तुम लग रहे हो घंटों से आत्मा मेचक है कि अमेचक है, मेचक है कि अमेचक है, मेचक है कि अमेचक है, निश्चय नहीं से अमेचक है, व्यवहार नहीं से मेचक है, और कौन सा व्यवहार और कौन सा निश्चय सब तुम्हें निकाल निकाल के खड़े कर दिए। अंत में आचार्य कहते भैया रहने दो बहुत हो गया, तुम आत्मा जो हमने बताया उसके बारे में सोचो, वो बेचक है कि अमेचक है कि एकाकार है, ये राग द्वेष वाला मन नहीं है, ये मलबूत वाला मन नहीं है, ये शरीर संबंधी मन नहीं है, ये राग द्वेष संबंधी मन नहीं है, ये तो चित्त में जो एकाकार और अनेकाकार संबंधी विकल्प खड़े होते हैं उसको यहाँ मेल कहा है। तो वो मेल आत्मा में नहीं है तो अब तो सही हो गया, कहते ये तो निश्चय नय का पक्ष है, वो समल है ये विभाग नय का पक्ष है। तो क्या कहते हैं कि भगवान आत्मा तो न मेचक है न अमेचक है, या तत्ववेदी चित पक्षपाता। क्यों तो तत्ववेदी है तो पक्षपात से चित्त है, तो तुम आत्मा को मेचक अमेचक के रूप में क्यों देखते हो, तुम आत्मा नहीं देख सकते। ऐसे भेद खड़े करने से क्या लाभ है कि हम तो भेद का निषेध कर रहे हैं, खड़े किए ना तब तो निषेध कर रहे हो, कि खड़े ही नहीं करते तो निषेध करने की क्या जरूरत थी बोलिए। तो हम तो ये कह रहे हैं कि भैया तुम ये झगड़े खड़े मत करो, निषेध का मौका ही नहीं आए, जीवों की प्रणति अलग अलग है। अखंड में तो कह रहे विभिन्न रुचया ही लोका, लोक की रुचि बिल्कुल भिन्न भिन्न प्रकार की है, अब अपनी अपनी रुचि से अपना अपना प्रबंधन सब करते हैं, अब करने दो। देखो यदि वो गति में होगा तो उसका फल तो वो भोगेगा ना, तुम्हें तो नहीं मिलेगा ना, तुम तो सही हो ना, क्यों तो हमें तो उन पर दया थी, इतनी गलती करके न मालूम कहाँ जाएंगे भगवान, कहाँ जाएंगे फिर अपना विचार करके तू कहाँ जाएगा, क्यों हमें दूसरों के इस विचार में क्यों उलझते हैं। गुरुदेव श्री का तत्व ज्ञान जो हमारे पास है, जिसमें क्रमबद्ध पर्याय है, त्रिकाली जो भगवान आत्मा है, निमित्त उपादान का स्वरूप है, निश्चय व्यवहार का स्वरूप है, ये सारी चीजें जो हैं, पुण्य पाप के बारे में है और आगम रखा है, कुंद कुंद की वाणी है, अमरचंद की है, जयसेन की है, जयचंद छाबड़ा की है, टोडरमल जी की है, कितना कितना माल है अपने पास, क्यों तुझे एक सेकंड की फुर्सत क्यों मिलना चाहिए सोचने के लिए। कब वो नहीं मानता, नहीं मानने देना, उसके मानने से तेरे को सम्मान होगा। आप स्वर्ण जी को मानते कि नहीं मानते, आप फलाने जी को मानते कि नहीं मानते, मैंने कहा सौगाणी सिद्धांत सम्मान दर्शन है कि आत्म सिद्धांत सम्मान दर्शन है, क्या बोलो तुझे क्यों नहीं पूछता है कि हम आत्मा को मानते हैं कि नहीं मानते, हम त्रिकाली ध्रुव को मानते कि नहीं मानते, क्यों और स्वामी को नहीं मानते कि किसको नहीं मानते। अरे उन सब जगत में सबका अस्तित्व है, हमें मानते हैं, नहीं उन्हें ज्ञानी मानते हो कि नहीं मानते हो, हमने उनको देखा ही नहीं है, उनकी बात सुनी नहीं है, अब हमको हरेक के बारे में हमें निर्णय करने जाए कि हम तो अहंत भगवान का निर्णय करने की आज्ञा दी है। कुछ निर्णय दो कि जो जान दी अहंतम दिव्यत्व गुणत्व प्रज्ञता उसे भगा था बदल दो, जो जान दी सौराणी दिव्यत्व गुणत्व प्रज्ञा जो जान दी अपान हमारे हम तो छोड़ के उनको जानने लगेंगे क्या करेंगे बोलिए। कौन किसको मानता है या नहीं मानता है, मैं तो ऐसा बोलता हूँ भगवान जी मैंने ये बताओ बेटा वो तो सौराणी जी तो गए, तुम मुझे मानते हो कि नहीं, बोलो क्या कहना है तुमसे, मानते हो कि नहीं मानते हो, कि नहीं मानते हो तो किससे बात करते हो, और मानते हो तो फिर मुझे कुछ नहीं देना है। क्या है अपनी जिनवाणी अपने सामने है उसकी अपनी चर्चा करें, इन विवादों में न उलझें, इसी में हमारा